हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अनंत ने थोड़ी घबराई हुई आवाज में वकील से कहा, मैं बताना भूल गया कि हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया है। वो हमारी छोटी सी लड़ाई हो गई थी तो मुझे लगा कि हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। ये सुनकर विहा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, ये कैसी बच्चों वाली हरकत है? लड़ाई तो हर मियाँ बीवी में होती है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप दूसरे दिन वकील को बुला लो डिवोर्स के लिए। अनंत ने आंखें छोटी करते हुए कहा, ये तुम बोल रही हो? तुम भी तो जब माही घर गई थी तब बोल रही थी कि तुम्हें वेदांत से डिवोर्स चाहिए, तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ? गलतियाँ तो सबसे होती है ना, मुझसे भी हो गई है। ये सुनकर विहा के चेहरे पर 12 बज गए, लेकिन फिर उसने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप तो मुझसे कितने ज़्यादा बड़े हो, मैं तो अभी बच्ची हूँ, और मेरा पति तो मुझे माफ़ भी कर देता है। मैं सिर्फ कहा था, पहले और करने में फ़र्क होता है। मैंने तो किसी वकील को नहीं बुलाया था। अनंत ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, फ़ोटो तुम्हारे बस में नहीं था, वरना तुम तो पूरा कोर्ट ही यहाँ बुला लो। माधवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ऐसे बच्चों की तरह लड़ना बंद करो और मुझे पूरी बात बताओ। ये सुनकर अनंत ने मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पहले मेरा कान तो छोड़ो, फिर बताता हूँ ना। माधवी ने फिर उसका कान छोड़ दिया, जिसके बाद अनंत ने जल्दी से वकील को देखते हुए कहा, आप जाइए, मैं आपके बिना डिवोर्स लिए ही फीस दे दूंगा, प्लीज़ अभी के लिए आप यहाँ से जाइए। ये सुनकर बेचारा वकील भी सोफे से उठा और अपनी कॉफ़ी बिना पिए ही कप वहीं छोड़कर तेज़ी से वहाँ से चला गया, क्योंकि वो भी माधवी का गुस्सा देखकर डर गया था और जल्द से जल्द निमानी हाउस से बाहर जाना चाहता था। उसके जाने के बाद अनंत ने गहरी सांस ली और फिर माधवी के दोनों हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बैठाते हुए बोला, आई एम रियली सॉरी मॉम, आगे से ऐसा नहीं होगा और मैं अपनी बीवी का बहुत ख्याल भी रखूंगा। आपको ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। निवेदिता और राधिका वापस अपने काम में लग चुकी थीं, क्योंकि उन्हें बहुत सारा काम था। विहा और राव्या भी अब एक दूसरे से बातें करते हुए वहां से चली गईं। बेचारा अनंत तब अकेला सफाई देता रह गया। वो चाह रहा था बस जल्द से जल्द माधवी उसे माफ़ कर दे और वो फिर से राव्या के पास चला जाए। उसका कितना अच्छा मोमेंट था जो बर्बाद हो गया। और तो और राव्या ने उसका साथ भी नहीं दिया, वो तो चुपचाप यहाँ से चली गई। डांट खाने के लिए भी बेचारा अकेला पड़ गया। थोड़ी देर बाद माधवी ने अनंत को अपने गले से लगाते हुए कहा, शादीशुदा जिंदगी को मजाक नहीं समझते हैं, ठीक है, आइंदा से मुझे ये शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। अनंत ने जल्दी से कहा, ये हुई ना अच्छी बात, आपने मुझे माफ़ कर दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं आगे से पक्का पक्का ध्यान रखूंगा कि ऐसी कोई गलती ना करूं। ये सुनकर माधवी भी हल्के से मुस्कुराई और फिर अनंत के सिर पर हाथ फेरा, जिसके बाद अनंत ने एक सुकून भरी सांस ली और फिर से वहां से उठकर तेजी से अपने कमरे में गया। वहां जाते ही उसकी आंखें छोटी हो गईं, क्योंकि विहा राव्या को देखकर जोरों से हंस रही थी, तो वहीं बेचारी राव्या का शर्म से बुरा हाल हो रहा था। विहा और राव्या एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थीं, इसीलिए वो अपनी फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस एक दूसरे के साथ शेयर कर रही थीं। विहा ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है मुझे तो इतना दर्द हुआ था कि मैं चलकर बाथरूम में भी नहीं गई थी, वेदांत मुझे अपनी बाहों में उठाकर लेकर गए थे, लेकिन अनंत भाई ये तो किसी काम के नहीं है, उन्होंने तुमको अकेला ही छोड़ दिया, इसके लिए तुम उनकी अलग से क्लास लगाना। अनंत ने गुस्से में कहा, तुम्हें मेरी क्लास लगवाने के अलावा कुछ और आता भी है या नहीं? उसे देखकर विहा एक पल के लिए डर गई, लेकिन अगले ही पल उसने हंसते हुए कहा, कितना फनी है ना, जिस दिन आप दोनों इंटीमेट हुए उसी दिन घर में वकील आ गया आप दोनों का डिवोर्स करने के लिए। मेरा तो हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा है और पक्का बच्चे का भी करने लगा होगा। इतना बोलकर विहा ने धीरे से अपने पेट को छुआ। ऐसा करता देख राव्या ने भी हंसते हुए उसके पेट पर हाथ फेरते हुए कहा, काकू को भी हंसी आ रही होगी अपने जोकर चाचू की हरकतों पर। अनंत ने आंखें छोटी की और विहा के पास जाकर उसके बालों की चोटी को पकड़ते हुए कहा, तुम ना एक नंबर की छिपकली हो, पहले तो मेरी बीवी से दूर हो जाओ और आने दो तुम्हारे पति को, मैं बताऊंगा उसे कि ये पिद्दी सी लड़की हम लोगों को कितना परेशान करती है, छोटी छोटी बात पर चिढ़ाने लगती है। विहा ने गुस्से में अपने बाल अनंत के हाथों से छुड़ाते हुए कहा, हाँ कौन सा डरती हूँ मैं आपके भाई से, कह देना जो कहना है, और वैसे भी मुझे पता है आपकी और राव्या की शादी कैसे हुई थी, वेदांत ने मुझे सब कुछ बताया था, तो मेरे सामने ज्यादा तीस मार खान बनने की जरूरत नहीं है, वो तो मेरी बहन ज्यादा अच्छी है इसीलिए उसने आपको एक्सेप्ट कर लिया, वरना इतनी बदतमीजी के बाद मैं तो दो थप्पड़ लगाए बिना माफ ना करूं। अनंत ने अपने मन में कहा, मेरी प्राइवेसी की बैंड बजा दी है इस वेदांत के बच्चे ने। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में वेदांत को अपनी टोमेटो की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि इतने दिनों तक उसकी बचकानी हरकतों को झेलने के बाद वेदांत को उसकी आदत लग गई थी। जूली ने वेदांत के सामने एक फाइल रखते हुए कहा, सर आपका ध्यान कहाँ है, मैं पिछले 10 मिनट से बोल रही हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन फिल कर दीजिए, मेरे पास और भी काम है। जूली भी अब वेदांत की ये हरकतें देखकर इरिटेट हो चुकी थी, इसीलिए उसका बोलने का टोन थोड़ा बदतमीजी वाला हो गया था। ये देखकर वेदांत ने आंखें छूटी करते हुए कहा, तुम मेरी बॉस हो या मैं तुम्हारा बॉस हूँ? अगर तुम्हारे पास और काम है तो जाकर कर लो, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। जूली को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने जल्दी से कहा, आई एम रियली सॉरी सर, मेरा वो मतलब नहीं था, बस मैं सुबह से परेशान हो गई थी। आगे से ऐसा नहीं होगा, आप चाहें तो मुझे इसकी पनिशमेंट भी दे सकते हैं। पनिशमेंट के नाम पर वेदांत जूली की सैलरी कट करता है, इसीलिए जूली को पनिशमेंट का ज्यादा डर नहीं था। तो वहीं वेदांत ने एक हाथ से अपना सिर पकड़ते हुए कहा, तुम जो पहले मेरे लिए कॉफी बनवा कर लाओ और ये काम मैं कर लूंगा, तुम्हें जो काम करना है बाकी वो सब कर लो। और हाँ, माही को भी एक कप कॉफी दे देना, उसका भी सरदर्द हो रहा था सुबह। रात को माही ने अकेले शुगर बेबी को संभाला था, इस वजह से फुट ढंग से सो नहीं पाई थी और इसी वजह से उसका सिर भी दर्द कर रहा था। गाड़ी में आते वक्त वेदांत ने माही से जब उसकी तबीयत पूछी तो माही ने उसको ये सब कुछ बता दिया था। इसके बाद से अब तक माही ने कॉफी नहीं पी थी, इस बात का ख्याल वेदांत को था और वो नहीं चाहता था कि उसकी इकलौती दोस्त ऐसे ही सरदर्द से परेशान होती रहे। जूली के जाने के बाद वेदांत ने जल्दी से अपना फोन निकाला और फिर विहा को वीडियो कॉल किया। दो रिंग जाते ही विहा ने कॉल उठा लिया। वो मजे से एप्पल खाते हुए शुगर बेबी के बच्चों को देख रही थी जो फिलहाल गार्डन में थे। उनकी आंखें नहीं खुली थी लेकिन ठंड होने के कारण बटलर ने उन्हें थोड़ी देर धूप में बैठा दिया था। उसे वैसे तो उनसे डर लग रहा था, इसीलिए वो उनके पास नहीं जा रही थी, बस उन्हें दूर से ही देख रही थी। वेदांत ने जब देखा कि विहा बड़ी गौर से किसी चीज को देख रही है तो उसने आंखें छोटी करते हुए कहा, टोमैटो ऐसा क्या देख लिया कि उनसे नजरें नहीं हटा रही हो? तुम्हारी जल्दी से बैक कैमरा करो और मुझे शुगर बेबी के बच्चे दिखाओ। उन्हें देखते ही वेदांत के चेहरे की परेशानी कहीं दूर हो गई और उसके होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई। उसने हंसते हुए कहा, ये दोनों कितने क्यूट हैं, तुम्हें पता है तुम्हारी माही ने इनका क्या नाम निकाला है?
विहा ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नहीं मुझे नहीं पता है, आप बताओ। वेदांत ने हंसते हुए कहा, इनमें से एक का नाम गूगल है जिसके पंजे काले रंग के हैं, दूसरे का नाम अभी डिसाइड नहीं हुआ है, उसका तुम डिसाइड कर लेना।